आगे सबक देखिए बे किताब पर। सिवम मा वला अल मुशब्बहातानी बिलैसा व आ अमले लैसा मेकुनन, चुनान के गोई मा जैदुन काइमन, जैदुन इसमें मास व काइमन खबरे ओ, चहारुम लाए नफी जिन्स, इसमें ई ला अक्सर मुजाफ बाशद मनसूब व खबरश मरफू, चू ला गुलाम रजुलिन जरीफुन फिद्दार। भाई गुज़श्ता सबक में मुख्तलिफ किस्म के आमिल और मामूल जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया और मुसन्निफ ने बतलाया था कि आवामिल एराब जो हैं वो दो किस्म पर हैं, कुछ लफ्जी हैं और कुछ मानवी। लफ्जी जब अमल करने वाला कोई लफ्ज हो तो उसको कहते हैं आमिल लफ्जी, और अगर अमल करने वाला यानी आमिल जो है लफ्ज ना हो तो वो क्या है, आमिल मानवी है, आमिल मानवी। जैसे उसकी मिसाल मैंने जिक्र की थी कि फेल मुजारे मनसूब होता है जब इस पर आमिल नासिब आ जाए, और फेल मुजारे मजजूम होता है जब उस पर आमिल जाजिम आ जाए, और फेल मुजारे पर जब कोई आमिल नासिब और आमिल जाजिम ना हो तो फेल मुजारे मरफू होता है। अब जैसे यजरिबू ये मरफू है, अब कोई आपसे पूछे इसमें क्या आमिल है, इस पर रफा आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इसके अंदर आमिल जो है वो मानवी है, लफ्जी नहीं है, क्योंकि यहां कोई और लफ्ज है ही नहीं, सिर्फ यजरिबू है, तो इसके अंदर आमिल क्या है, मानवी है, और वो आमिल मानवी क्या है, इस यहां पर नासिब और जाजिम से इसका खाली होना, इस माना की वजह से ये मरफू है, मरफू है। और फिर इन्होंने बताया था कि आमिल लफ्जी जो हैं वो तीन किस्म पर हैं, हुरूफ भी हैं, अफ़ाल भी हैं और अस्मा भी। और हुरूफ को मुकद्दम किया क्योंकि हुरूफ क्योंकि कुल तीन किस्में हैं भाई, इसम फेल और हर्फ। तो हर्फ जो है बाकी दोनों किस्मों के अंदर अमल करता है, जबकि फेल सिर्फ इसम के अंदर अमल करता है, और इसम जो है सिर्फ इसम ही के अंदर अमल करता है, फेल या हर्फ में अमल नहीं करता। तो हर्फ के अमल का दायरा वसी हुआ, उसका अमल ज्यादा हुआ, वो फेल में भी अमल करता है इसम में भी, इसलिए उसको मुकद्दम किया। दूसरे नंबर पर फेल को लेकर आए क्योंकि फेल अगरचे एक में अमल करता है लेकिन अपने मुखालिफ में यानी इसम में अमल करता है, जबकि इसम को सबसे आखिर में लाए क्योंकि वो भी अगरचे एक में अमल करता है लेकिन वो अपने मुखालिफ यानी हर्फ या फेल में अमल नहीं करता बल्कि अपने ही जैसे इसम में अमल करता है, अपने जैसे ही किसी इसम में ही अमल करता है। और इसको उन्होंने बतलाया कि हम तीन बाबों में इनको जिक्र करेंगे, एक के अंदर हुरूफ आमिला का बयान होगा, एक में वो अफाल जो अमल करते हैं, और तीसरे में वो अस्मा जो अमल करते हैं। और फिर वो हुरूफ जो अमल करते हैं वो दो किस्म पर हैं, कुछ इसम में अमल करते हैं और कुछ फेल में। तो सबसे पहले जो इसम में अमल करते हैं उनको लेकर आए और बतलाया कि वो पांच किस्म पर हैं। नंबर एक हुरूफ जारा, ये 17 हुरूफ हैं जो इसम पर दाखिल होते हैं और उसको जर देते हैं, तो इनको हुरूफ जारा कहते हैं। दूसरा हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, भाई दूसरी किस्म है हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, ये हुरूफ 6 हुरूफ हैं, इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लैता और लाअल्ला, और ये मुशब्बा बिल फेल कहलाते हैं यानी जो फेल के मुशाबे हैं। और मैंने बतलाया कि ये फेल के मुशाबे हैं लफ्जों के एतबार से भी और माना के एतबार से भी। लफ्जों में फेल के मुशाबे हैं कि फेल जिस तरह सुलासी, रुबाई और खुमासी होता है यानी उसके माजी के कभी 3 कभी 4 कभी 5 हरूफ होते हैं चाहे असली हो चाहे जायद, तो इन हरूफ में से भी बाज सुलासी हैं, बाज रुबाई हैं और बाज खुमासी हैं। और जैसे माजी मबनी अल फतह होती है इसी तरह ये सारे भी क्या हैं, मबनी अल फतह। मैंने यहां आपको तफसील बतलाई थी कि मशहूर तो इसी तरह है कि माजी मबनी अल फतह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि माजी के सारे सीगे मबनी अल फता हों, बल्कि माजी के एक एक सीगे में आप गौर करते जाएं आपको पता चलता जाएगा कि यह मबनी अल फता है या मबनी अल सुकून है या मबनी अल जम है वगैरह। मसलन जाराबा, देखो इस फेल का मादा क्या है, ज़ाद राबा, तो बा पर जो हरकत आएगी उसी पर मबनी उसको कह देंगे। जाराबा में बा पर क्या है, फतहा, तो कहेंगे ये मबनी अल फतह है। जारा बा तस्निया में, इसमें बा पर क्या है, फतहा, तो कहेंगे ये भी सीगा मबनी अल फतह है। जारा बू, यहां पर बा पर क्या है, जम्मा है, तो कहेंगे ये जो जमा का सीगा है ये मबनी अल जम है। अगला सीगा क्या है, जारा बत, तो ये सीगा भी क्या है, मबनी अल फतह। बा को देखना है, आप देख रहे हैं आखिरी हर जो फेल का आखिरी हर्फ है वो देखना है, जमीर को नहीं देखना। उससे अगला सीगा ज़ारा बाता, देखो इसमें भी बा पर क्या है, फतहा, तो कहेंगे मबनी अल फता है। उससे अगला सीगा ज़ारा बना, इसमें बा पर सुकून है, तो कहेंगे ये मबनी अल सुकून है ये वाला सीगा। उससे अगला सीगा है ज़ारा बता, यहां भी बा साकिन, तो ये भी मबनी अल सुकून। उससे अगला सीगा ज़ारा बतुमा, ये भी मबनी अल सुकून। अगला ज़ारा बतुम, ये भी मबनी अल सुकून। उससे आगे ज़ारा बती, ये भी मबनी अल सुकून। उससे आगे ज़ारा बतुमा, यहां भी बा साकिन, ये मबनी अल सुकून। उससे आगे ज़ारा बतुन्ना, यहां ये भी मबनी अल सुकून। आगे ज़ारा बतू, ज़ारा बना, ये सब भी क्या है, मबनी अल सुकून है भाई। तो ये हरूफ जो हैं ये फेल के मुशाबे हैं लफ्जों के एतबार से भी और माना के एतबार से भी। लफ्जों के एतबार से मुशाबेहत है कि जैसे फेल सुलासी रुबाई और खुमासी होता है, ये भी सुलासी रुबाई और खुमासी हैं। और जैसे फेल मबनी अल फता होता है, ये भी मबनी अल फता हैं। और माना के अंदर भी फेल के साथ मुशाबेहत है कि ये सब अफाल का माना अदा करते हैं। इन्ना और अन्ना ये हक्ककतु का माना अदा करते हैं, ये तहकीक के लिए आते हैं, तो हक्ककतु फेल जो है उसका माना अदा करते हैं। और का अन्ना शब्बहतु फेल का माना अदा करता है, शब्बहतु मैंने तशबीह दी, तशब्बहतु नहीं भाई, तशब्बहतु का माना तो है मैं मुशाबे हुआ, बात समझ में आ गई। तो का मैं जब कहता हूं का अन्ना जैदन असदुन, गोया के जैद शेर है, तवज्जो है, का अन्ना जैदन असदुन, गोया के जैद शेर, तो मैंने अपने आप को शेर से तशबीह दी या मैंने जैद को तशबीह दी, जैद को तशबीह दी, तो लिहाजा कहेंगे शब्बहतु। ये तो का अन्ना किसका माना अदा करता है, शब्बहतु का। शब्बहतु का माना एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह देना, और तशब्बहतु का माना है खुद किसी चीज के मुशाबे होना, बात समझ में आ रही है। तो इन्ना और अन्ना किसका माना अदा करते हैं, हक्ककतु, और का अन्ना शब्बहतु, और लाकिन्ना इस्तदरकतु, ये इस्तदराक के लिए आता है, और इस्तदरकतु फेल का माना अदा करता है। और इस्तदराक किसे कहते हैं, मैंने बतलाया था कि कोई बोलने वाला कोई कलाम करता है और उस कलाम की वजह से दूसरे के जहन में कोई वहम आ सकता है, कोई और बात भी आ सकती है, तो वो लाकिन्ना लाकर उस वहम को खत्म करता है, दूर करता है। मसलन जैद और आमर दो साथी हैं और हर जगह इकट्ठे घूमते हैं, तो मैंने आपसे कहा जैदुन हाजिरुन, जैद हाजिर है, आपके जहन में वहम आ सकता है कि जब जैद हाजिर है तो यकीनन आमर भी क्या होगा, हाजिर, तो लेकिन आमर तो हाजिर नहीं था, लेकिन चूंकि आपके जहन में यह वहम आ सकता है इसलिए मैं उस वहम को दूर कर देता हूं, लाकिन्ना के जरिए उस वहम को, तो मैं कैसे कहूंगा, जैदुन हाजिरुन लाकिन्ना अमरन गाइबुन, लेकिन अमर गाइब है। तो ये इस्तेदराक है। और लैता जो है तमन्ना के लिए आता है, तो ये तमन्नई तू फेल का माना अदा करता है। और लाअल्ला तरज्जी के लिए आता है यानी उम्मीद के लिए, तो ये तरज्जई तू फेल का माना अदा करता है। और उर्दू में भी मैंने बतलाया था इन्ना और अन्ना का माना अमूमन बेशक के साथ करते हैं, का अन्ना का तर्जमा गोया के साथ करते हैं, का अन्ना जैदन असदुन, गोया के जैद शेर है। اور لاکن نہ جو ہے اس کا ترجمہ لیکن کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور لیتا کا ترجمہ کاش کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور لعلہ کا ترجمہ شاید یا امید ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور ان کا عمل بھی انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، اور اسم کو یہ اپنے نصب دیتے ہیں اور خبر کو یہ رفع دیتے ہیں. ان زیدن قائم، دیکھو انہ نے کیا کیا، زیدن اپنے اسم کو نصب دیا اور قائم کو رفع. تو پہلے تھا مثلا زید قائم، زید مبتدا تھا اور قائم اس کی خبر، اس کے بعد پھر اس پر کیا لے آئے اننا، تو اننا نے کیا کیا، پہلے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیا. اور پہلے زید قائم، زید کو کہتے تھے مبتدا اور قائم کو کہتے تھے مبتدا کی خبر، لیکن اب جب اننا آ گیا تو اب زیدن کو کہیں گے یہ اننا کا اسم ہے، اور قائم کو کہیں گے یہ اننا کی خبر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی، سو ما ولا المشبہ تانی بھی لیسا و عمل لیسا میں کنن، چنانکہ گوئی ما زید قائمن، زید اس میں ماست و قائمن خبر ہے. او انہوں نے بتلایا تھا کہ وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں وہ پانچ قسم پر ہیں، دو بیان ہو گئے، ایک حروف جارہ اور دوسرا حروف مشبہ بالفعل. اب تیسری قسم آ گئی، تیسری قسم کہتے ہیں ما ولا المشبہتانی بلیسا، وہ ما اور لا المشبہتانی جو مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ، کس کے ساتھ مشابہ ہیں، لیسا کے ساتھ مشابہ ہیں. وعمل لیسا میں کنن، اچھا لیسا کے بارے میں پہلے سمجھ لیں، یاد رکھیے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے لیسا، کس میں سے، افعال ناقصہ میں سے ہے. فعل جو ہوتا ہے وہ ایک فاعل یا نائی فاعل چاہتا ہے، فعل جب بھی آئے گا اس کے لیے ایک فاعل یا نائی فاعل چاہیے، فعل معروف ہو تو اس کے لیے فاعل چاہیے، اور فعل مجہول ہو تو اس کے لیے نائب فاعل چاہیے، اور فاعل یا نائب فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے. آگے مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مفعول فضلہ ہوتا ہے، زائد چیز، اس کو ذکر کریں یا نہ کریں بات پھر بھی پوری ہے. مثلا میں کہنا چاہتا تھا ضربت زیدن، میں نے پٹائی کی، کس کی کی، زید کی. اب ضربت میں یہ تا ضمیر یہ فاعل ہے، اور یہ زیدن یہ مفعول ہے. ضربت میں نے پٹائی کی، زیدن کس کی، زید، تو زید مفعول ہے، اور مفعول فضلہ ہوتا ہے، زائد چیز ہوتی ہے، اس کو ذکر کریں یا نہ کریں دونوں طرف کلام پورا ہے. ایک تو صورت یہ میں نے زیدن کو باقاعدہ ذکر کر دیا کہ میں نے کس کی پٹائی کی ہے، زید، اور دوسری صورت یہ ہے زیدن کو میں حذف کر دیتا ہوں، صرف اتنا کہتا ہوں ضربت میں نے پٹائی کی ہے، تو بھی کلام پورا ہے، تو بھی کلام پورا ہے. مفعول چاہیے اس کے لیے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جملے میں مفعول کو ذکر کریں یا نہ کریں اس سے جملے پر اثر نہیں پڑتا، جملہ پھر بھی پورا ہے. فاعل ذکر نہیں کرو گے یا نائی فاعل کو ذکر نہیں کرو گے تو کلام پورا ہی نہیں، کیونکہ کلام کے لیے کیا چیز چاہیے، کیا کتنی چیزیں چاہیے، دو چیزیں، ایک مسند اور ایک مسند الیہ. اور تو فعل جو ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے، اور جو فاعل یا نائی فاعل ہوتا ہے وہ مسند الیہ. تو جب مسند اور مسند الیہ آ گئے تو کلام پورا ہو گیا. اب مفعول آپ لائیں یا نہ لائیں کلام پورا ہے، لے آئیں گے تو سننے والے کو پتا چل جائے گا ضربت زیدن، اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ میں نے کس کی پٹائی کی ہے، زید کی. لیکن اگر میں صرف یہ کہتا ہوں ضربت میں نے پٹائی کی ہے، کلام پھر بھی پورا ہے. ہاں اب آپ کو یہ پتا نہیں چلا کہ میں نے کس کی پٹائی کی ہے، اتنا تو پتا لگ گیا کہ میں نے پٹائی کی ہے، لیکن کس کی ہے یہ آپ کو پتا نہیں چلا. تو بہرحال کلام پورا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ جو عام افعال ہیں، عام افعال، یہ فاعل یا نائب فاعل کو چاہتے ہیں، یہ خود مسند بنتے ہیں، اور فاعل یا نائب فاعل مسند الیہ بنتا ہے، اور اس پر بات پوری ہو جاتی ہے، مفعول کو ذکر کریں یا نہ کریں. جبکہ کچھ افعال افعال ناقصہ کہلاتے ہیں، वो हमेशा दो इसम चाहते हैं, एक को रफा देते हैं और एक को नसब देते हैं, उनको अफाल नाकिसा कहते हैं। भाई आम अफाल में तो सिर्फ फाइल या नाई फाइल एक ले आओ बस बात क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, लेकिन अफाल नाकिसा में ऐसा नहीं, वहां दो इसम लाना पड़ेंगे, एक इनका इसम बनेगा और एक इनकी खबर। और ये हुरूफ मुशब्बा बिलफेल के बरअक्स अमल करते हैं, हुरूफ मुशब्बा बिलफेल भी दो इसम चाहते थे लेकिन पहले इसम को वो नसब और दूसरे को रफा देते थे, जबकि अफाल नाकिसा जो है ये पहले इसम को रफा देते हैं और दूसरे इसम को नसब देते हैं। तो आगे अफाल नाकिसा का बाकायदा बयान आ जाएगा जहां फेल की बहस आएगी कि फेल अमल करता है, फेल आमिल है, तो अफाल नाकिसा, और आपको बतलाएंगे वो 17 हैं, और जैसे काना सारा वगैरह उन्हीं में एक लैसा है, उन्हीं अफाल नाकिसा में एक लैसा है, और लैसा अफाल नाकिसा में से है तो अफाल नाकिसा जैसा अमल करेगा, और अफाल नाकिसा क्या अमल करते हैं मैंने बतलाया कितने इसम चाहते हैं, दो इसम चाहते हैं, पहले को रफा देते हैं और दूसरे को नसब, जबकि इनके मुकाबले में हुरूफ मुशब्बा बिलफेल वो अपने इसम को नसब देते हैं और खबर को रफा देते हैं। तो अफाल नाकिसा का अमल बरअक्स है हुरूफ मुशब्बा बिल फेल के। तो लैसा जो है याद रखिए, लैसा जैदुन काइमन, इन्ना के साथ कैसे मैंने पढ़ा था, इन्ना जैदन काइमुन, जैदन मंसूब था और काइमुन मरफू, लेकिन लैसा के साथ बरअक्स होगा, लैसा जैदुन काइमन, जैदुन मरफू होगा और काइमान मंसूब, और इन्ना जैदन काइमुन, जैदन को क्या कहते थे, इन्ना का इसम, और काइमुन को इन्ना की खबर। इसी तरह अफ़ाल नाकिसा में भी है, लैसा जैदुन काइमन, ये जैद को क्या कहेंगे, लैसा का इसम, और काइमन को लैसा की खबर कहेंगे, लेकिन एराब जो है वो हुरूफ मुशब्बा बिलफेल के बरअक्स है। भाई तो लैसा जैदुन काइमन का तर्जमा है जैद खड़ा नहीं है, लैसा जैदुन काइमन, जैद खड़ा नहीं है। तो लैसा देखो क्या करता है, अपने इसम को रफा देता है और अपनी खबर को नसब देता है, और नीज लैसा कलाम में नफी पैदा कर देता है। जैदुन कायमुन का माना तो था जैद खड़ा है, लेकिन लैसा जैदुन कायमन का माना है जैद खड़ा नहीं है। तो लैसा कलाम में नफी पैदा कर देता है, तवज्जो है, फिर दोहराएं भाई, लैसा क्या अमल करता है, अपने इसम को रफा और अपनी खबर को नसब देता है, और नीस कलाम में नफी पैदा कर देता है, पहले कलाम मुस्बत था अब क्या बन जाएगा, मनफी। जैदुन कायमुन, देखो इसमें कयाम का इस्बात है जैद के लिए कि जैद खड़ा है, तो ये कलाम मुस्बत है, और लैसा जैदुन कायमन, इसमें जैद से कयाम की नफी है कि जैद खड़ा नहीं है, तो लैसा नफी का फायदा देता है। तफसील समझ में आ गई, अब आइए किताब पर। कहते हैं सिवो मा वला अल मुशब्बहतानी बिलैसा, तीसरा जो है वो मा और ला हैं जो मुशाबे हैं लैसा के साथ। ये मा और ला इधर देखिए भाई, ये मा और ला ये लैसा के मुशाबे हैं, यानी जिस तरह लैसा एक इसम और खबर पर दाखिल होता है, ये भी एक इसम और खबर पर दाखिल होते हैं, और लैसा जैसे अपने इसम को रफा देता है और खबर को नसब, इसी तरह ये मा और ला भी अपने इसम को रफा देते हैं और अपनी खबर को नसब देते हैं, और नीस ये लैसा की तरह हैं कि जिस तरह लैसा जो है वो कलाम में को नफी का फायदा देता है, कलाम को मनफी बना देता है, इसी तरह मा और ला भी कलाम को मनफी बना देते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कि ये मुशाबे हैं लैसा के साथ। ये मा और ला मुशाबे हैं लैसा के साथ। मुशाबेहत समझ में आई, क्या मुशाबेहत, कि ये भी क्या चाहते हैं, लैसा की तरह एक इसम और खबर। नीस क्या मुशाबेहत है, लैसा अपने इसम को रफा देता है और खबर को नसब, ये भी अपने इसम को रफा और खबर को नसब देते हैं। और तीसरे क्या मुशाबेहत, कि ये जिस तरह लहसन नफी का फायदा देता है, कलाम को मनफी बना देता है, इसी तरह ये भी नफी का फायदा देते हैं, कलाम को मनफी बना देते हैं। जैसे मा जैदुन काइमन, ये यूं कहो पहले था जैदुन काइमुन, अब इस पर मा ले आए और ये मा कौन सा है, मुशाबे भी लैसा, तो ये उसी जैसा अमल करेगा और ये इसम को रफा देगा खबर को नसब, तो कैसे पढ़ेंगे मा जैदुन काइमन, तो देखो जैदुन को रफा दिया और काइमन को नसब, और नीस कलाम में नफी पैदा कर दी, अब तर्जमा होगा जैद खड़ा नहीं है। जैदुन काइमन का माना क्या था, जैद खड़ा है, और मा जैदुन काइमन का माना है जैद खड़ा नहीं है। देखिए किताब पर, सिवो मा वलल मुशब्बह तानी भी लैसा, वो मा और ला जो मुशाबे हैं लैसा के साथ, वह अमल लैसा मेकुनंद, और वो लैसा वाला अमल करते हैं चुनान के गोई जैसे कि आप कहें मा जैदुन काइमन, जैद खड़ा नहीं है, तो जैद इसमें मास, जैद जो है वो मा का इसम है, वकाइमन खबर ओ, और काइमन उसकी खबर है। फिर मा और ला में फर्क यह है, इन्होंने एक मिसाल दे दी मा की, मा और ला में फर्क यह है कि मा मारिफा और नकेरा दोनों पर दाखिल होता है, जबकि ला सिर्फ नकेरा पर दाखिल होता है। तवज्जो है, मारिफा और नकेरा जानते हैं या नहीं, मारिफा कितनी चीजें हैं, सात, नंबर एक तमाम जमीरें, नंबर दो तरतीब से, नंबर एक तमाम जमीरें, नंबर दो आलम, नंबर तीन अस्माय इशारा, नंबर चार अस्माय मौसूला, नंबर पांच मारिफा बनिदा, नंबर छह मारिफा ब अलिफ्लाम, और नंबर सात इन पहले जो मारिफा बनिदा के अलावा जो बाकी पांच बयान हुए उनमें से किसी एक की तरफ जो मुजाफ हो जाए वो भी मारिफा है। तो ये जो मा है ये मारिफा पर भी दाखिल होता है और नकेरा पर भी, यानी इस मा का इसम मारिफा भी आ सकता है और नकेरा भी, लेकिन जो ला है उसका इसम सिर्फ नकेरा ही आएगा, मारिफा नहीं आ सकता। फर्क समझ में आया, क्या फर्क, मा का इसम मारिफा भी हो सकता है और नकेरा भी, लेकिन ला का इसम हमेशा नकेरा होगा। भाई आगे देखिए भाई, चहारुम लाए नफी जिन्स, चौथा जो है वो लाए नफी जिन्स है। लाए नफी जिन्स कितनी किस्में बयान की थी, वो हरूफ जो अमल करते हैं इसम में, वो कितनी किस्म पर, पांच, तीन किस्में बयान हो गई, पहली हरूफ जारा, नंबर दो हरूफ मुशब्बा बिल फेल, और नंबर तीन माओला मुशाबे भी लैसा भाई। अब चौथी किस्म आ गई लाए नफी जिन्स, लाए नफी जिन्स, लाए नफी जिन्स, जैसे इसकी मिसाल है ला रजुला फिदार, ला रजुला फिदार, कोई आदमी उस घर में नहीं है, ला रजुला फिदार, कोई, तर्जमा समझ में आ रहा है, कोई आदमी उस घर में नहीं है। तो देखो ये ला नफी के लिए आता है, मैंने इस बात किया आदमी के घर में होने का या नफी की, नफी की, कि कोई आदमी उस घर में नहीं है, तो यह ला भी नफी के लिए आता है। और नीस ये लाए नफी जिन्स कहते हैं, तो यह जिन्स से किसी चीज की नफी करता है, जिन्स से, तो यह जिन्स से किसी चीज की नफी करता है। जैसे मैंने कहा ला रजुला फिदारी, कोई आदमी घर में नहीं है, तो जिन्स से रजुल से मैंने घर में होने की नफी कर दी, जिन्स रजुल यानी रजुल की जिन्स में से कोई एक फर्द भी इस वक्त उस घर में नहीं है, तो इसे लाए नफी जिन्स कहते हैं, जो जिन्स से किसी सिफत की नफी करता है। जिन्स से मैंने क्या कहा, कोई आदमी, कोई रजुल दुनिया में मौजूद ही नहीं है, या फिर दार वो मौजूद नहीं है, फिर दार मौजूद नहीं है, देखा, जिन से रजुल की नफी नहीं की, जिन से रजुल से फिर दार होने की मैंने क्या कर दी नफी, कि जिन से रजुल तो हैं लेकिन उस घर के अंदर इन कोई इनमें से नहीं है, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لائے نفی جنس کہتے ہیں، لائے نفی جنس. تو جنس سے ایک چیز کی نفی کر دیتا ہے یہ لا، تو اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں. تو دیکھو یہ لائے نفی جنس نفی کے لیے آتا ہے، اور جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے. جنس سے، جیسے لا رجل فی الدار، کوئی آدمی اس گھر میں نہیں ہے. تو میں نے جن سے رجل کی نفی نہیں کی کہ جن سے رجل کا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے صرف اتنا کہا کہ لا رجل فی الدار، اس گھر میں کوئی آدمی نہیں. تو اس گھر میں ہونے کی اس کی نفی کی ہے، یعنی اس کی ایک صفت کی نفی کر دی ہے، صفت کی. تو لا رجل فی الدار، کوئی آدمی اس گھر میں نہیں ہے. تو یہاں دیکھو، میں نے جن سے رجل کے وجود کی نفی نہیں کی کہ دنیا میں کسی رجل کا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے صرف کیا کہا، لا رجل فی الدار، کوئی آدمی اس گھر میں نہیں ہے. تو اس گھر کے اندر آدمی ہونے کی میں نے نفی کی ہے. یعنی یوں کہے، آدمی سے ایک صفت کی میں نے نفی کر دی، جن سے رجل سے ایک صفت کی نفی کر دی. کیا صفت؟ اس گھر میں اس کا ہونا، اس کسی آدمی کا اس گھر میں ہونا، یہ ایک صفت تھی. میں نے اس کی رجل سے نفی کر دی کہ جن سے رجل میں سے کوئی بھی اس گھر میں نہیں ہے. جن سے رجل کی نفی نہیں کی کہ دنیا میں کوئی آدمی موجود ہی نہیں، بلکہ کسی آدمی کے اس گھر میں ہونے کی نفی کی ہے کہ اس گھر میں نہیں ہے. تو یہ صفت کی نفی ہے. یا اور مثال لے لو، اور مثال لے لو. مثلا لا رجل ظریفن، لا رجل ظریفن، کوئی آدمی خوش طبع نہیں. کوئی آدمی، ظریف کا معنی ہوتا ہے خوش طبع، ہنس مکھ بھائی، ہنسی مذاق کرنے والا. تو لا رجل ظریفن، کوئی آدمی خوش طبع نہیں ہے. اس سے دیکھو وضاحت ہو جائے گی. اب اگرچہ یہ جھوٹ ہے، دنیا میں کوئی، دنیا میں کتنے ہی آدمی کیا ہیں، خوش مزاج ہیں، ہنس مکھ ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو اگرچہ یہ اس میں کذب لازم آ رہا ہے، جھوٹ، لیکن بہرحال بات اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو، ایک ہے جنس کی نفی کرنا، ایک ہے جنس سے کسی چیز کی نفی کرنا. جنس، جیسے جن سے رجل، تو میں نے کیا کہا، لا رجل ظریفن، کوئی آدمی ہنس مکھ نہیں ہے، کوئی آدمی خوش طبع نہیں ہے. تو میں نے جن سے رجل کی نفی کی کہ جن سے رجل کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، یا جن سے رجل سے ظریف ہونے کی نفی کی؟ جن سے رجل سے ظریف ہونے کی میں نے نفی کی ہے، جن سے رجل کی نفی نہیں کی. جن سے رجل کی نفی تو یہ تھی، میں کہتا کوئی مرد موجود ہی نہیں ہے، تو میں نے کیا کر دی، جن سے رجل کی ہی نفی کر دی. لیکن یہاں میں نے کیا کہا، لا رجل ظریف، کہ کوئی آدمی خوش مزاج نہیں ہے. لا رجل ظریف، کوئی آدمی خوش مزاج نہیں ہے. تو میں نے جن سے رجل کی نفی کی کہ کسی آدمی کا وجود ہی نہیں ہے، یا آدمی سے خوش مزاج ہونے کی صفت کی نفی کر دی؟ تو دیکھا، تو یہ جو لائے نفی جنس ہے، یاد رکھو، نام تو ہے اس کا لائے نفی جنس، وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، لیکن یہ دراصل جنس کی نفی کے لیے نہیں آتا، یہ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے. تو یہاں مضاف محذوف نکال لیں، لائے نفی صفت جنس، چہارم لائے نفی صفت جنس، وہ لا جو جنس کی صفت کی نفی کے لیے آتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یاد تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے، لائے نفی جنس. لیکن یاد رکھنا ہے کہ یہ لائے نفی جنس سے شبہ یہ پڑتا ہے کہ شاید یہ لا جنس کی نفی کر دیتا ہے. میں نے بتلایا، یہ جنس کی نفی نہیں کرتا، بلکہ جنس سے کسی صفت کی نفی کرتا ہے. اور یہ مثال ذہن میں یاد رکھیں، لا رجل ظریفن، کوئی آدمی خوش مزاج نہیں ہے. اب دیکھو، یہاں آدمی جن سے رجل کی نفی نہیں کی کہ کسی جن سے رجل کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، بلکہ جن سے رجل سے ایک صفت کی نفی کر دی کہ جن سے رجل میں کوئی ایک بھی خوش طبع اور خوش مزاج نہیں ہے. تو کیا کیا؟ جن سے صفت کی نفی کر دی. تو یہ لا نفی جنس کے لیے آتا ہے، یا نفی صفت جنس کے لیے آتا ہے؟ हाँ जिन से सिफत की नफी करता है, लेकिन मशहूर नाम इसका इसी तरह आपने याद करना है लाए नफी जिन्स है। ये क्या है? लाए नफी जिन्स है भाई। तो कहते हैं चहारुम लाए नफी जिन्स, चौथा जो है वो लाए नफी जिन्स है। इसमें ईला अक्सर मुजाफ बाशद मंसूब व खबरश मरफू। इसमें ईला, इस ला का इसम जो है अक्सर मुजाफ बाशद, अक्सर मुजाफ होगा यानी आगे उसका मुजाफिले आएगा, मंसूब और क्या होगा? मंसूब। इस ला का इसम अक्सर मुजाफ होगा और मंसूब होगा। वह खबरश मरफू, और इसकी खबर मरफू होगी। चूं जैसे के ला गुलाम रजुलिन जरीफुन फिदारी। अच्छा, लाए नफी जिन्स के बारे में तफसील याद रखिए भाई कि लाए नफी जिन्स इसका अमल बाज़ औकात ये अपने इसम को नसब देता है, बाज़ औकात इसका इसम जो है वो मबनी अलल फता होता है, और बाज़ औकात ये अमल ही नहीं करता, अमल ही नहीं करता। तो इसकी कई सूरतें बनती हैं। कितने कभी क्या करेगा, ये अपने इसम को नसब देगा, कभी इसका इसम मबनी अलल फता होगा, और कभी ये अपने इसम में अमल करेगा ही नहीं, और वो जैसे पहले मरफू था इस ला के दाखिल होने के बाद भी वो मरफू ही रहेगा। तवज्जो है, फिर दोहराएं, लाए नफी जिन्स क्या करता है? कभी अपने इसम को नसब देता है, कभी इसका इसम मबनी अलल फता होता है, और कभी ये अमल करता ही नहीं, और इस ला के दाखिल होने से पहले जैसे इसम मरफू था ला के दाखिल होने के बाद भी वो मरफू रहता है। जैसे जैदुन काइमुन था, जैदुन भी मरफू, काइमुन भी मरफू, फिर इन्ना आया तो कैसे पढ़ा? इन्ना जैदन काइमुन। देखो इन्ना ने जैद को नसब दे दिया, और इसी तरह था जैदुन काइमुन, और इसके ऊपर फिर आप लैसा ले आए तो कैसे पढ़ा? लैसा जैदुन काइमन। तो देखो लैसा ने क्या किया? काइमन को नसब दे दिया। इसी तरह मां को ले आए, जैदुन काइमुन था, मां मुशाबी भी लैसा आया तो कैसे पढ़ेंगे? मां जैदुन काइमन। तो देखो मां ने अमल किया, लेकिन कभी कभार ये जो लाए नफी जिन्स है ये तो कभी तो अपने इसम को नसब देता है, कभी इसका इसम मबनी अलल फता होता है, और कभी ये मुलगा अनिल अमल होता है यानी अमल करता ही नहीं, यानी इसका अमल लगव होता है, ये अमल नहीं करता। अब इसका इसम मबनी अलल फता कब होगा और मंसूब कब होगा और ये मुलगा अनिल अमल कब होगा, तो तफसील याद रखें। लाए नफी जिन्स का इसम अगर उसके साथ जुड़ा हुआ हो, तवज्जो है, पहली शर्त, लाए नफी जिन्स का इसम ला के साथ जुड़ा हुआ हो, और नीज वो नकेरा हो, और नीज वो मुफरद हो। तीन शर्तें हैं। पहली शर्त क्या? लाए नफी जिन्स का इसम ला के साथ जुड़ा हुआ हो और नकेरा हो और मुफरद हो, तो फिर वो मबनी अलल फता होगा। जैसे ला रजुला फिद्दार, ला रजुला फिद्दार, ये रजुल क्या है? मबनी अलल फता है। तवज्जो है, ला रजुला, ये रजुल क्या है? मबनी अलल फता है, क्योंकि तीनों शर्तें पूरी। पहली शर्त क्या? ये देखो इसम रजुल जो है ला के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी शर्त कि ये इसम क्या हो? नकेरा हो। देखो रजुल भी नकेरा है, मारिफा की कोई किस्म ये नहीं, और ये मुफरद हो। मुफरद याद रखो, नहव के अंदर मुफरद कई मानी के लिए इस्तेमाल होता है। मुफरद कभी बोलते हैं तस्निया और जमा के मुकाबले में, जब कह दें ये मुफरद है मालूम हुआ तस्निया और जमा नहीं है। तवज्जो है, कभी मुफरद का लफ्ज बोलेंगे तो वो तस्निया और जमा के मुकाबले में होगा, जब मुफरद कह दिया मालूम हुआ तस्निया और जमा नहीं है। कभी मुफरद का लफ्ज जुमले के मुकाबले में आता है, जब वहां मुफरद कह दें मालूम हुआ जुमला नहीं है, क्योंकि किसके मुकाबले में आया भाई? जुमला जिसमें बात पूरी हो, मुस्नद भी हो और मुस्नद इलैह भी हो, और अगर मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों नहीं हैं फिर चाहे 10 लफ्ज ही क्यों ना हो उसको हम मुफरद कहेंगे। अल्लदी जाराबका, अल्लदी जाराबका वो आदमी जिसने आपकी पिटाई की थी। अल्लजी इसमें मौसूल, जाराबा फेल, इसके अंदर हुआ जमीर इसका फाइल जो अल्लजी को राजे, और काफ जमीर मफूल। देखो कितने लफ्ज हो गए, 4 लफ्ज हो गए। अल्लदी जाराबा इसके अंदर हुआ और फिर आगे काफ जमीर, तो फेल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर सिला। मैंने बताया था इसमें मौसूल के लिए हमेशा क्या चाहिए, सिला। तो अल्लजी इसमें मौसूल और जाराबा का इसका सिला, मौसूल सिला मिलकर, याद रखें यह मुफरद है जुमला नहीं। वो आदमी जिसने आपकी पिटाई की थी, मैं 10 दफा कहूं वो आदमी जिसने आपकी पिटाई की थी। अल्लदी जाराबका वो आदमी जिसने आपकी पिटाई की थी। आप कहेंगे भाई बात तो पूरी करें, उसको क्या हुआ है, वो आया है चला गया है मर गया है जिंदा है, आप बात पूरी नहीं कर रहे। देखा मालूम हुआ ये बात पूरी नहीं, ये जुमला पूरा नहीं। तो अल्लदी जाराबका देखो कई लफ्ज हैं लेकिन बात पूरी है, बात पूरी नहीं, मौसूल सिला मिलकर मुफरद है जुमला नहीं, जुमला नहीं। तो कभी मुफरद किसके मुकाबले में आता है, जुमले के मुकाबले में। तो अल्लदी जाराबका ये जुमला है या मुफरद है, मुफरद है, हालांकि लफ्ज तो काफी हैं लेकिन फिर भी इसको क्या कहेंगे, मुफरद, क्योंकि इसके मुकाबले में क्या आ रहा है, जुमला है। तो कभी मुफरद तस्निया और जमा के मुकाबले में बोलते हैं, जब मुफरद कहें तो तस्निया और जमा को निकाल देते हैं कि ये लफ्ज मुफरद है, मालूम हुआ तस्निया और जमा नहीं। कभी मुफरद जुमले के मुकाबले में आता है, जब एक कुछ लफ्जों के बारे में कह दें कि ये मुफरद हैं, मालूम हुआ ये जुमला नहीं है। और कभी मुफरद जो है वो मुरक्कब के मुकाबले में आता है, जब एक लफ्ज के बारे में कह दें ये मुफरद है, मालूम हुआ मुरक्कब नहीं है। मुरक्कब में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज होते हैं और मुफरद के अंदर एक लफ्ज होगा। तो कभी मुफरद किसके मुकाबले में आता है, मुरक्कब के मुकाबले में। जब मुफरद कह दिया मालूम हुआ मुरक्कब नहीं है, एक ही लफ्ज है भाई मुफरद है। और कभी मुफरद जो है मुजाफ और मुशाबे मुजाफ के मुकाबले में आता है, मुजाफ और भाई मुजाफ के लिए हमेशा मुजाफिले चाहिए, मुजाफिले चाहिए। तो जब मैं कहूं ये लफ्ज मुफरद है और किसके मुकाबले में कहूं, मुजाफ या मुशाबे, जब मैंने कहा मुफरद है मालूम हुआ ये मुजाफ या मुशाबे मुजाफ नहीं है। भाई मुजाफ तो आप जानते हैं गुलाम ज़ैदिन, ये गुलाम क्या है मुजाफ, और जैद क्या है मुजाफुन इलैह, मुजाफ जिसकी निस्बत किसी चीज की तरफ की जाए। गुलाम आम था, गुलाम जैद का भी हो सकता था, बकर का भी, खालिद का भी, लेकिन मैंने गुलाम की इजाफत कर दी किसकी तरफ, जैद की तरफ, मालूम हुआ अब ये गुलाम किसका है, जैद। तो गुलाम ज़ैदीन तर्जमा कैसे करेंगे, जैद का गुलाम। मुरक्कब इजाफी आप पढ़ चुके हैं भाई, तो मुरक्कब इजाफी जिसमें एक चीज की इजाफत की जाए दूसरी चीज की तरफ, और उर्दू में इसका तर्जमा का के और की के साथ करते हैं। तो किताब ज़ैदीन क्या तर्जमा, जैद की किताब। कलम ज़ैदीन क्या तर्जमा, जैद का कलम। तो ये मुजाफ है। इसी तरह एक होता है मुशाबे मुजाफ, मुशाबे मुजाफ, मुशाबे मुजाफ वो इसम जिसका माना पूरा नहीं होता जब तक इसके साथ कोई और इसम न मिलाया जाए, तो उसको मुशाबे मुजाफ कहते हैं। भाई जैसे मुजाफ किसका मोहताज, मुजाफिले का, मुजाफ के लिए हमेशा मुजाफिले चाहिए। मसलन गुलाम ज़ैदीन, गुलाम ज़ैदीन का क्या तर्जमा, जरा जैद को हटा दो गुलाम, अब वही तर्जमा हो रहा है नहीं। अब तो कोई भी गुलाम मुराद हो सकता है, लेकिन मैं हर गुलाम तो नहीं बताना चाहता, कौन सा गुलाम बताना चाहता हूं, जैद का गुलाम, तो मुझे जैद लाना पड़ेगा। गुलाम ज़ैदीन, तो मुजाफ हमेशा किसका मोहताज होता है, मुजाफिले का, उसके बगैर उसका माना पूरा नहीं। इसी तरह मुशाबे मुजाफ ऐसा इसम कि जिसका माना पूरा नहीं होता जब तक उसके साथ कोई और इसम न मिलाएं। जैसे तालिया, तलाया तुलू, तुलू का माना है चढ़ना, तुलू होना भी, तलाती शम्स सूरज क्या हुआ, तुलू हो गया, और तलाया तुलू का माना चढ़ना भी, तो तालिया इसमें फाइल है, ताले का माना चढ़ने वाला। अब मैं कहूं तालिया तो पता नहीं चल रहा कि चढ़ने वाला किस पर है, छत पर चढ़ने वाला है, दरख्त पर चढ़ने वाला है, दीवार पर चढ़ने वाला है, पहाड़ पर चढ़ने वाला है तो इसके लिए आगे एक और इसम चाहिए जिसे इसका माना पूरा हो जाए। तो मसन में मसन तालिउन जबालन, तालिउन तालिउन चढ़ने वाला, जबालन किस पर, पहाड़ पर, यह मफूल बन रहा है तालिया के लिए, तवज्जो है, तो यह मफूल बन रहा है। तो तालिया का माना पूरा नहीं जब तक इसके साथ जबल वगैरह का लफ्ज न मिलाएं, इसका माना हमें पूरा समझ में नहीं आता। तालिया का माना तो है चढ़ने वाला, लेकिन किस चीज पर चढ़ने वाला, छत पर, दीवार पर, पहाड़ पर, कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसके लिए एक इसम चाहिए जिससे इसका माना पूरा हो जाए। तो तालिउन जबालन, जबालन क्या है, मफूल है, तालिया क्या है, इसमें फाइल, और जबलन उसके लिए क्या बन रहा है, मफूल बन रहा है। तो देखो ये आपस में मुजाफ मुजाफिले तो नहीं, लेकिन तालिया मुजाफ की तरह मोहताज है किसका, जबलन, जबलन का, तवज्जो है, तालिया मुजाफ की तरह, जैसे मुजाफ मोहताज होता है किसका, मुजाफिले का, इसी तरह तालिया मोहताज है किसका, जबल, यानी आगे एक लफ्ज का मोहताज है जिससे उसका माना पूरा हो जाए। बात समझ में आ गई। तो कभी कभार जब मुफरद का लफ्ज बोला जाए तो वो मुकाबले में आता है मुजाफ और मुशाबे मुजाफ के। जब कह दिया जाए ये लफ्ज मुफरद है, मालूम हुआ ना मुजाफ है और ना मुशाबे है मुजाफ है। तो मुफरद का लफ्ज कितनी चीजों के मुकाबले में आता है, चार चीजों के मुकाबले में। कभी मुफरद का लफ्ज किसके मुकाबले में आता है, तस्निया और जमा। जब कह दिया जाए यह मुफरद है, मालूम हुआ ना तस्निया है और ना जमा है। फिर कभी मुफरद जुमले के मुकाबले में आता है, जब कह दिया जाए यह लफ्ज मुफरद है, मालूम हुआ यह जुमला नहीं है। चाहिए जो मुफरद है इसमें चार लफ्ज हों, पांच हों, छह हों, दस हों, लेकिन जब जुमला नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, मुफरद कहेंगे। और कभी मुफरद का लफ्ज मुरक्कब के मुकाबले में आता है, जब कह दें यह लफ्ज मुफरद है, मालूम हुआ मुरक्कब नहीं, अब सिर्फ एक ही लफ्ज होना चाहिए फिर ही मुफरद कहेंगे। अगर दो या ज्यादा हुए फिर तो क्या बन जाएगा, मुरक्कब बन जाएगा। तवज्जो है, मुफरद जब जुमले के मुकाबले में आए तो फिर कई लफ्ज हो सकते हैं, और मुफरद जब मुरक्कब के मुकाबले में आए तो फिर मुफरद एक ही लफ्ज होगा, एक से ज्यादा नहीं, वरना तो मुरक्कब बन जाएगा। और कभी कभार मुफरद मुजाफ और मुशाबे मुजाफ के मुकाबले में आता है, जब कह दिया जाए यह मुफरद है, मालूम हुआ ना यह मुजाफ है और ना मुशाबे है मुजाफ है। तो मुफरद कितनी चीजों के मुकाबले में आता है, चार, नंबर एक तस्निया और जामा, और कभी जुमले के मुकाबले में, और कभी मुरक्कब के मुकाबले में, और कभी मुजाफ या मुशाबे मुजाफ के मुकाबले में। बात चल रही थी कि लाए नफी जिंस का इसम कभी वो मबनी अलल फता होता है, कभी वो मंसूब होता है, और कभी ला जो है मुलगा अनिल अमल होता है, यानी अमल करता ही नहीं, आगे जो इसम आएगा वो मरफू होगा। इसम क्या होगा, तो ये कहां पर इसका, कब इसका इसम मबनी अलल फता होगा, कब इसका इसम मंसूब होगा, और कब ये मुलगा अनिल अमल होगा। मैं तफसील बयान कर रहा था कि लाए नफी जिंस का इसम मबनी अलल फता होगा कब, जब तीन शर्तें हों। कितनी शर्तें, पहली शर्त क्या, कि वो इसम जो है वो ला के, ला का इसम ला के साथ जुड़ा हुआ हो, दरमियान में कोई और लफ्ज ना हो। दूसरी शर्त कि वो नकेरा हो, मारिफा न हो। तीसरी शर्त कि वो मुफरद हो, यानी मुजाफ या मुशाबे मुजाफ न हो। तो यहां जो मुफरद का लफ्ज आया वो किसके मुकाबले में आया, मुजाफ या मुशाबे मुजाफ के मुकाबले में आया। बात समझ में आ गई, फिर दोहराएं, लाए नफी जेंस का इसम मबनी अलल फता होगा, कितनी शर्तें हैं, तीन, तीन और शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त क्या, ला का इसम ला के साथ जुड़ा हुआ हो। दूसरी शर्त नकेरा हो। तीसरी शर्त मुफरद हो, मुफरद हो यानी मुजाफ या मुशाबे मुजाफ न हो। तो इस सूरत में ये मबनी अलल फता होगा। तवज्जो भाई, तवज्जो से सुनना, जैसे ला रजुला फिदार, ला रजुला फिदार, घर में कोई आदमी नहीं है। देखो रजुल जो है ला का इसम है, और ला का इसम ला के साथ जुड़ा हुआ है या दरमियान में कोई और लफ्ज भी है, साथ जुड़ा हुआ है। पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त, रजुल नकेरा है या मारिफा है, नकेरा है, दूसरी शर्त भी पूरी। तीसरी शर्त, रजुल मुजाफ या मुशाबे मुजाफ तो नहीं, नहीं है, क्योंकि रजुल के आगे ना मुजाफ इले आ रहा है और ना कोई और इसम आ रहा है, मालूम हुआ ना ये मुजाफ है ना मुशाबे मुजाफ, तीनों शर्तें पूरी हो गईं, तो अब ये रजुल मबनी अलल फता है, ला रजुला फिदार, ये मबनी अलल। भाई आपको कैसे पता चला मबनी अलल फता है? आप इसको मनसूब क्यों नहीं कहते? इश्काल समझ में आ रहा है कि इसको तो मंसूब कहना चाहिए, इस पर नसब आ रहा है, लेकिन आप इसको क्या कह रहे हैं? मबनी अलल फता। जवाब ये कि भाई अगर ये मंसूब होता मुअरब होता तो फिर तो इस पर तन्वीन आनी चाहिए थी, ला रजुलन फिदार यूं कहते हम, लेकिन तन्वीन नहीं आ रही, मालूम हुआ ये मुअरब नहीं है इस वक्त, बल्कि क्या बन चुका? मबनी बन चुका है, इसीलिए इस पर तन्वीन नहीं आ रही। ला रजुला, रजुल का इराब कैसे पढ़ेंगे? मुफरद मुनसरिफ सही है, हालत रफी में रजुलन, हालत नस्बी में रजुलन, हालत जरी में रजुलिन, तो इसका इराब तो रजुलन रजुलन रजुलिन तनवीन के साथ है, लेकिन यहां आप तनवीन नहीं पढ़ रहे, मालूम हुआ अब ये मुअरब नहीं है इस वक्त, बल्कि क्या बन चुका है? मबनी। ये किसने बताया जी? ये जो इस पर तनवीन नहीं आ रही, इसने बताया कि ये इस वक्त क्या बन चुका है? मबनी हो चुका है, मौरब नहीं। मौरब होता तो ला रजुलन होना चाहिए था। बात समझ में आ गई? तो लाए नफी जिन्स का इसाम मबनी अलल फता होता है जब तीन शर्तें पूरी हो। पहली शर्त क्या? साथ जुड़ा हुआ हो। दूसरी शर्त नकेरा हो। तीसरी शर्त कि मुजाफ या मुशाबे मुजाफ ना हो, यानी मुफरद हो, और यहां तीनों शर्तें पूरी, इसलिए ला रजुला फिदार। और अगर तीसरी शर्त पूरी ना हो, कौन सी तीसरी शर्त? मुफरद ना हो, यानी मुजाफ या मुशाबे मुजाफ हो, फिर ला का इसम मंसूब होगा। तवज्जो है? तीन शर्तों में से पहली दो तो पूरी हो, ला नफी जिन्स का इसम उसके साथ जुड़ा हुआ हो, और नीज वो क्या हो? नकेरा हो, लेकिन तीसरी शर्त के मुफरद हो ये पूरी नहीं, यानी वो क्या है? मुजाफ है या मुशाबे मुजाफ, तो इस सूरत में वो मंसूब होगा। जैसे इसकी मिसाल इन्होंने दिया, ला गुलाम रजुलिन जरीफुन फिदार, ला गुलाम रजुलिन, देखो लाए नफी जिन्स का इसम क्या है? गुलाम रजुलिन, गुलाम रजुलिन, ये लाए नफी जिन्स का इसम है, और तो साथ जुड़ा हुआ है या दरमियान में कोई और लफ्ज भी है? साथ जुड़ा हुआ है, पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त गुलाम रजुलिन, ये नकेरा भी है, मारिफा नहीं, मारिफा नहीं। याद रखो कोई इसम जब मारिफा की तरह मुजाफ हो तो वो मारिफा बन जाता है। आपने मारिफा की सात किस्में पढ़ी या नहीं पढ़ी? उसमें सातवीं किस्म क्या थी? कि कोई इसम इन पांच में से किसी की तरह मुजाफ हो जाए, वो भी क्या बन जाता है? मारिफा। यहां पर देखो गुलाम रजुलिन, गुलाम मुजाफ और रजुल मुजाफोन इले। अच्छा बताइए, ये जो मुजाफ इले है रजुल, ये जमीर है? नहीं। ये किसी का नाम है? नहीं। अच्छा ये इसमें इशारा है? नहीं। ये इसमें मौसूल है? नहीं। अच्छा ये मुआरफ बिल लाम है? नहीं। तो देखो गुलाम कलस मुजाफ है रजुल की तरफ, लेकिन रजुल मारिफा की कोई किस्म नहीं, ये भी नकेरा है, तो नकेरा की इजाफत हो गई नकेरा की तरफ। और याद रखना जब नकेरा की इजाफत नकेरा की तरफ हो तो वो नकेरा ही रहता है। अगर यहां अर रजुल होता गुलाम अर रजुली तो फिर ये गुलाम का लफ्ज क्या बन जाता? मारिफा। लेकिन ये नकेरा की तरफ, तो जो लफ्ज जो इसम मारिफा की तरफ मुजाफ हो वो क्या बन जाता है? मारिफा। गुलामुहू, मैंने किसकी तरफ इजाफत की? हाँ जमीर की तरफ, तो ये गुलाम मारिफा बन गया। गुलामु जैदिन, मैंने किसकी तरफ इजाफत की? जैद की तरफ, अलम की तरफ, तो ये भी मारिफा बन गया। गुलामु हाजा, इस आदमी का गुलाम, गुलाम की इजाफत मैंने किसकी तरफ की? हाजा की तरफ, इसमें इशारा की तरफ, तो ये भी क्या बन गया? मारिफा। गुलामुल्लजी ज़रबा का, गुलाम उस आदमी का जिसने आपकी पिटाई की थी, तो गुलाम की इजाफत मैंने अल्लजी इसमें मौसूल की तरफ कर दी, तो गुलाम भी क्या बन गया? मारिफा। गुलाम की इजाफत में मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ कर देता हूं गुलामुर रजुली, तो ये गुलाम भी क्या बन गया? मारिफा। लेकिन यहां गुलाम की इजाफत नकेरा की तरफ है, तो ये नकेरा का नकेरा ही है। बात क्या चल रही थी? लाए नफी जिन्स का इसम अगर उसमें तीन शर्तें हों तो वो मबनी अलल फता होगा। कौन सी शर्तें? नंबर एक साथ जुड़ा हुआ हो, दूसरी शर्त नकेरा हो, तीसरी शर्त مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو, جیسے لا رجلا فی الدار, یہ تو یہ لا رجل, یہ رجل جو ہے مبنی علی الفتح ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ جی نہیں, یہ مبنی ہے, مبنی ہے, مبنی ہونے کا کیسے پتا چلا آپ کو؟ تنوین نہیں ہے, یہ بتلا رہی ہے کہ یہ مبنی ہے, یہ معرب نہیں ہے. پھر اگر تیسری شرط نہ ہو, پوری ہو, تیسری شرط کیا تھی؟ مفرد ہونا چاہیے. اگر مفرد نہ ہو یعنی مضاف ہو یا مشابہ مضاف, باقی دو شرطیں پوری ہیں, ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, نکرہ بھی ہے اور تیسری شرط پوری نہیں ہے. جیسے اس مثال میں ہے, لا غلام رجل ظریف فی الدار, غلام رجل یہ لا نفی جنس کا اسم ہے. پہلی شرط کیا؟ ساتھ جڑا ہوا ہو, یہ ساتھ جڑا ہوا ہے. دوسری شرط کیا؟ کہ نکرہ ہو. غلام رجلین بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے, کیونکہ نکرہ کی طرف اضافت ہو رہی ہے. اور تیسری شرط کیا تھی؟ مفرد ہو. یہ مفرد نہیں ہے, یہ تو مضاف ہے. تو اس صورت میں لا نفی جنس کے سب منصوب ہوتا ہے, اسی لیے لا غلام رجلین یہ کیا ہے؟ منصوب. توجہ ہے؟ آپ یہ نہ کہیں غلام, اس پر بھی تو تنوین نہیں آ رہی. بھئی یہ مضاف ہے, مضاف پر تنوین نہیں آتی, مضاف پر تنوین آتی ہی نہیں ہے بھائی. اسی طرح جس لفظ پر الف لام داخل ہو جائے اس پر بھی تنوین نہیں آتی. تو پیچھے لا رجولا وہاں پر تو نہ وہ مضاف تھا نہ اس پر الف لام, یوں کہو تنوین سے مانع دو چیزیں ہیں, دو چیزیں ہیں وہ تنوین کو نہیں آنے دیتی. ایک تو اسم پر اگر الف لام آ جائے, رجلن تنوین ہے, لیکن اگر آپ الف لام لے آئیں ار رجلو, اب تنوین نہیں آئے گی, کیونکہ الف لام کیا ہے؟ مانع تنوین, یہ تنوین کے لیے رکاوٹ ہے. یا مضاف ہو جائے کوئی اسم, غلام زیدن, ویسے تو غلام پر تنوین تھی, غلامن غلامن غلامن, لیکن جب اس کی آپ نے اضافت کر دی زید کی طرف تو اب تنوین ختم ہو گئی, غلام زیدن. تو مانع تنوین دو چیزیں ہیں, یا اس لفظ پر کیا آ جائے؟ الف لام, یا اس لفظ کی اضافت ہو جائے, وہ مضاف بن جائے. تو لا رجلا فی الدار, لا رجلا یہاں تنوین نہیں آ رہی, حالانکہ مانع تنوین کوئی چیز نہیں. یا اس رجل پر الف لام ہے؟ نہیں. یہ مضاف ہے؟ نہیں. مانع تنوین کوئی چیز نہیں پھر بھی تنوین نہیں آ رہی, معلوم ہوا یہ کیا بن چکا؟ مبنی بن چکا. اور لا غلام رجلین, اس میں بھی غلام پر تنوین نہیں آ رہی, لیکن وہاں مانع تنوین چیز موجود ہے کہ وہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے. تو لا نفی جنس کا اسم جب ساتھ ملا ہوا ہو اور نکرہ ہو لیکن مفرد نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ مضاف یا مشابہ مضاف, تو وہ منصوب ہو. توجہ ہے؟ تین میں سے تیسری شرط پوری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو جیسے یہاں تیسری شرط پوری نہیں, تو لا غلام رجل ظریف فی الدار, ترجمہ کیا ہوگا؟ لا غلام رجل, کسی مرد کا کوئی غلام ظریف خوش طبع نہیں ہے, خوش مزاج نہیں ہے, فی الدار اس گھر میں. کسی شخص کا کوئی خوش مزاج غلام نہیں ہے اس گھر میں. بھئی یہ ظریف یہ ہے خبر اول, اور فی الدار یہ ہے خبر ثانی, دو خبریں لے آئے بھائی. کیوں؟ وہی جو خرابی لازم آ رہی تھی, میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتلایا تھا لا رجولا ظریف, لا رجولا, لا رجولا ظریف, کوئی آدمی خوش مزاج نہیں ہے, یہ جھوٹ لازم آیا یا نہیں؟ بے شک یہ ایک مثال ہے لیکن اس سے تو جھوٹ لازم آ رہا ہے. لا رجل ظریف کیا ترجمہ؟ بھائی میں نے آپ کو یہ مثال ذکر کی تھی, لا رجل ظریف بتلایا تھا کہ لا نفی جنس وہ جنس کی نفی نہیں کرتا بلکہ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے. لا رجل ظریف کیا مانا؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے جن سے رجل کی نفی کی کہ وہ دنیا میں موجود نہیں, یا جن سے رجل سے خوش مزاج ہونے کی نفی کی؟ خوش مزاج. تو یہ لا نفی جنس کے لیے نہیں آتا بلکہ نفی صفت جنس کے لیے آتا ہے, جن سے صفت کی نفی کرتا ہے. تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے مثال بنائی تھی, اگرچہ اس سے جھوٹ لازم آیا کہ لا رجل ظریف کہ دنیا میں کوئی آدمی خوش مزاج نہیں ہے, یہ تو جھوٹ لازم آیا. بہت سے آدمی کیا ہوتے ہیں؟ خوش مزاج. تو اسی جھوٹ سے بچنے کے لیے صاحب کتاب نے فی الدار ایک اور خبر بھی ساتھ بڑھا دی, لا غلام رجل ظریف. ترجمہ کریں, فی الدار کو ذرا چھوڑ دیں, ला गुलाम रजुलिन जरीफ, उन किसी मर्द का कोई गुलाम खुश मिजाज नहीं है, किसी मर्द का। आज तो गुलामों का जमाना खत्म हुआ, पहले तो गुलाम आम होते थे भाई, तो क्या ऐसा मुमकिन था कि दुनिया में किसी आदमी का एक भी गुलाम खुश मिजाज ना हो? नहीं, तो ये झूठ लाजिम आता था अगर ये कहा जाए कि किसी आदमी का कोई गुलाम खुश मिजाज नहीं। तो उसके साथ फिर दार एक और खबर ले आए कि उस घर में किसी आदमी का कोई गुलाम खुश मिजाज नहीं है। अब यह सच हो सकता है एक घर हो और उसके अंदर कोई ऐसा गुलाम मौजूद न हो, तो हम कह सकते हैं ला गुलाम रजुलिन जरीफुन फिदारी, किसी आदमी का कोई खुश मिजाज गुलाम उस घर में नहीं है। बात समझ में आ गई। ला के अमल की दो सूरतें हो गई। पहली क्या सूरत? लाए नफी जिंस का इसम मबनी अलल फता होगा, कब, कितनी शर्तें हों? तीन। नंबर एक, उसके साथ मिला हुआ हो। दूसरी शर्त, नकेरा हो। तीसरी शर्त, मुफरद हो यानी मुजाफ या मुशाबे मुजाफ ना हो। और अगर ये तीसरी शर्त पूरी ना हुई, पहली दो तो पूरी लेकिन तीसरी शर्त पूरी नहीं, तो फिर लाए नफी जिंस का इसम मनसूब होगा। जैसे ला गुलाम मारा जुलिन, देखो ये गुलाम मनसूब है। और अगर तो ये तो वो सूरत थी जिसमें तीसरी शर्त नहीं पूरी, और अगर पहली दो शर्तों में से कोई पूरी ना हो, यानी ला का इसम उसके साथ जुड़ा हुआ ना हो, दरमियान में फसल आ जाए, या ला का इसम नकेरा ना हो बल्कि क्या हो, मारिफा हो, फिर याद रखो इस सूरत में ला मुलगा अनिल अमल होगा, वो कोई अमल नहीं करेगा। और इस सूरत में ला को दो दफा लाना पड़ेगा, और ला के साथ तकरार इसम भी होगा, ला के साथ। जैसे मसलन देखो, मैं मारिफा ले आता हूं, ला जैदुन फिद्दार, ला जैदुन फिद्दार, जी पहली शर्त पूरी है, साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी शर्त क्या थी? नकेरा हो, हालांकि जैदुन तो क्या है, मारिफा। तो पहली दो शर्तों में से अगर कोई एक भी ना पाई गई, चाहे दोनों ना हो चाहे कोई एक ना हो, तो इस सूरत में याद रखना ला का भी तकरार होगा और उस इसम के साथ एक और इसम का भी तकरार होगा। और यूं कहेंगे ला जैदुन फिद्दारी वला अमरुन, ला जैदुन फिद्दारी वला अमरुन। तो देखो ला के साथ जैद मारिफा आया था, तो अब दोबारा एक और ला भी लाना पड़ा और उसके साथ एक और इसम, कोई और इसम भी साथ लाना पड़ा, ला जैदुन फिद्दारी वला अमरुन। और नीज देखो ला मुलगा अनिल अमल है, जैदुन को वो नसब दे रहा है? नहीं, नसब नहीं दे रहा। और इसी तरह अमरुन में भी कोई अमल नहीं कर रहा। यह कौन सी सूरत थी? दूसरी शर्त पूरी नहीं थी। अगर पहली शर्त पूरी ना हो, साथ जुड़ा हुआ ना हो, तो भी तकरारे ला होगा और ला के साथ इसम का तकरार होगा। जैसे पहले क्या था, ला रजुला फिद्दार, अजरा फिद्दार को पहले ले आओ और रजुल को मुअख्खर कर दो, ला फिद्दारी रजुलुन, ला फिद्दारी, अब कौन सी शर्त पूरी नहीं? पहली शर्त पूरी नहीं। और चाहे पहली पूरी ना हो चाहे दूसरी पूरी ना हो, दोनों सूरतों में ला का भी तकरार होता है और ला के साथ इसम का भी तकरार। तो अब यूं कहेंगे ला फिद्दारी रजुलुन वला इमरातुन, घर में ना कोई मर्द है और ना कोई औरत। बात समझ में आई क्या? अगर पहली दो शर्तों में से कोई एक शर्त रह जाए, पूरी ना हो, चाहे दोनों पूरी ना हो चाहे दोनों में से एक पूरी ना हो, तो फिर क्या जरूरी? ला का भी तकरार और ला के इसम का भी तकरार, और नीज ला मुलगा अनिल अमल होगा, यानी अपने इसम को नसब नहीं देगा। जैसे ला जैदुन फिद्दारी, बोलें दोहराएं भाई, ला जैदुन फिद्दारी वला अमरुन, फिर दोहराएं ला जैदुन फिद्दारी वला आमरुन। देखो ये नकेरा की शर्त पूरी नहीं, तो जैदुन मारिफा आ गया है, लिहाजा अब ला का भी तकरार हुआ और ला के साथ एक और इसम आमरुन का भी तकरार, और ला मुलगा अनिल अमल है, अमल नहीं कर रहा, नसब नहीं दे रहा। और या पहली शर्त पूरी ना हो, किस तरह, ला फिद्दारी रजुलुन वलम वला इमरातुन, इसको मिलाकर पढ़ेंगे वलम मरातुन, ला फिद्दारी रजुलुन वला मरातुन। देखो ला के साथ उसका इसम जुड़ा हुआ नहीं, दरमियान में फिदार आ गया, फिदार जार मजरूर आ गया, तो अब ला का भी तकरार हुआ और उसके साथ उसका एक और इसम इमरातुन का भी तकरार हुआ, और नीज ला मुलगा अनिल अमल है, ला नसब नहीं दे रहा, मैं रफा पढ़ रहा हूं, ला फिदारी रजुलोन वाला मराअतुन। जी देखिए अब किताब पर कहते हैं चहारुम लाए नफी जींस, चौथा जो है वो लाए नफी जींस है, इसमें ई ला अक्सर मुजाफ बाशद मनसूब व खबरश मरफू, इसमें ई ला इस ला का जो इसम है अक्सर मुजाफ बाशद मनसूब, वो अक्सर मुजाफ होता है मनसूब होता है, मुजाफ होता है और मुजाफ हुआ, कौन सी शर्त रह गई, तीसरी शर्त रह गई, तो इसलिए वो मंसूब होगा, वह खबरश मरफू और उसकी खबर मरफू होगी। चूं ला गुलाम रजुलिन जरीफ उन फिदारी, के किसी आदमी का कोई गुलाम खुशतबा नहीं है उस घर में, ये फिदार दूसरी खबर सानी है, ये क्यों लाए, झूठ से बचने के लिए। और अगर नकेराए मुफरदा बाशत, और अगर ला का इसम क्या हो, नकेरा हो और मुफरदा बाशद और मुफरदा हो, और एक तीसरी शर्त भी मैंने कही थी कि ला का इसम उसके साथ मिला हुआ हो, तो मबनी बाशद बर फतहा, तो इस सूरत में वो मबनी होगा फतह पर, चूं ला रजुल फिदारी, जैसे ला रजुल फिदारी, और तर्जमा क्या होगा, कोई मर्द उस घर में नहीं है, किसी खास घर की तरफ इशारा किया। वह अगर बाद ओ मारिफा बाशद, और अगर ला के बाद मारिफा आ जाए, तो तकरार ला बा मारिफा दीगर लाजिम बाशद, तो ला का तकरार एक और मारिफा के साथ लाजिम होगा, ला जैदुन फिदारी वाला आमरुन, तो जब ला के साथ जैद मारिफा आया तो तकरार ला के साथ एक और मारिफा का जिक्र जरूरी है, तो लिहाजा आगे ला आमरुन लाना पड़ा, ला जैदुन फिदारी वाला आमरुन। तर्जमा समझ में आया, वह अगर बाद ओ मारिफा बाशद, और अगर ला के बाद कोई मारिफा हो, तो तकरार ला बा मारिफा दीगर लाजिम बाशद, तो ला का तकरार एक और मारिफा के साथ लाजिम होगा। तकरार कहते हैं एक चीज को दोबारा लाना, यानी दोबारा ला को लाना पड़ेगा और उसके साथ एक मारिफा भी लाना पड़ेगा। वला मुलगा बाशद, और ला क्या होगा, मुलगा होगा, क्या माना मुलगा, यानी अमल न कुनद, अमल नहीं करेगा, नसब नहीं देगा। वह आ मारिफा मरफू बाशद ब इब्तिदा, और वो मारिफा मरफू होगा इब्तिदा की वजह से, किसकी वजह से, इब्तिदा की वजह से। भाई देखो जैदुन कायमुन, जैदुन है मुब्तदा और कायमुन है उसकी खबर, अब ये जो मुब्तदा और खबर है, याद रखो इनमें भी आमिल मानवी है, इनमें भी आमिल मानवी है। जैदुन मरफू, क्या आमिल, आप कहेंगे इब्तिदा आमिल है। कायमुन मरफू, आपसे कोई पूछे ये क्यों मरफू, आप क्या कहेंगे, इब्तिदा आमिल है, तो इब्तिदा आमिल मानवी है और वो मुब्तदा और खबर में आमिल होती है। इब्तिदा कहते किसे हैं, देखो जैदुन, इधर देखो जैदुन कायमुन, जैदुन भी मरफू, कायमुन भी मरफू, जैद क्या है मुबतदा, कायमुन क्या है खबर, जैद क्या है मुस्नद इले, और कायमुन क्या है उसकी मुस्नद है। तो देखो ये इनमें आमिल इब्तिदा है, इब्तिदा इसे कहते हैं, देखो मैं इब्तिदा की ऐसी तारीफ करूंगा इसमें सिर्फ मुबतदा और खबर रह जाएंगे और कोई नहीं अंदर दाखिल होगा। मुबतदा खबर दोनों क्या है, या एक मुस्नद है या एक मुस्नद इले है। इब्तिदा कहते हैं इसम का खाली होना अवामिले लफ्जिया से, ये दोनों भी किससे खाली हैं, कोई आमिल लफ्जी आमिल यहां मौजूद नहीं, इसम का खाली होना अवामिले लफ्जिया से, इस तौर पर कि ये मुस्नद हो या मुस्नद इले हो, इस तौर पर कि वो, तो देखो मुब्तदा ये मुस्नद इले है और ये आमिले लफ्जी से खाली, तो इसके अंदर आमिल क्या, इब्तिदा, और खबर कायमुन ये मरफू है, इसके अंदर आमिल इब्तिदा। इब्तिदा किसे कहते हैं कि इसम खाली हो किससे, आमिल लफ्जी से, इस तौर पर कि ये क्या हो, मुस्नद हो या मुस्नद इले। तो ये तारीफ सिर्फ मुब्तदा और खबर पर सादिक आती है, मुब्तदा वो आमिल लफ्जी से खाली है और मुस्नद इले है, खबर आमिल लफ्जी से खाली है और मुस्नद है, यानी उसकी तरफ किसी का इसनाद हो या उसका इसनाद किसी की तरफ किया जाए। इब्तिदा समझ भी आया कि ऊपर से गुजर गया, इब्तिदा عامل معنوی ہے. عامل معنوی ابتدا کسے کہتے ہیں؟ اور یہ صرف کس کس میں عامل ہے؟ مبتدا میں اور خبر میں، اور کسی جگہ ابتدا عامل نہیں. مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، زیدن قائمن، زیدن کیا ہے؟ مرفوع. قائمن بھی کیا ہے؟ مرفوع. تو یہ دونوں مرفوع ہیں. اور رفع خود آتا ہے یا کسی اس کے لیے کوئی عامل چاہیے؟ عامل چاہیے. اب کوئی پوچھے یہاں عامل کیا، تو کوئی لفظ تو ہے نہیں، کوئی لفظ ایسا نہیں جو کیا کر رہا ہو، زید کو رفع دے رہا ہو، کوئی لفظ ایسا نہیں جو قائمن کو کیا کر رہا ہو، رفع. تو پھر کہتے ہیں ان کے اندر عامل ابتدا ہے. کیا عامل ہے؟ ابتدا. ایک عامل معنوی ہے، جیسے فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے کب؟ جب وہ عامل جازم اور عامل ناصب سے خالی. یہاں بھی اسی طرح کوئی عامل لفظ ہی نہیں ہے اور مبتدا خبر دونوں پر رفع آ رہا ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ ان دونوں میں عامل کیا ہے؟ ابتدا. ابتدا بھائی، ابتدا کیسے پتا چلے گا؟ کہیں اور تو ابتدا عامل نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ابتدا صرف ان دو میں عامل ہے. ابتدا اسے کہتے ہیں کہ کوئی اسم کیا ہو عامل لفظی سے خالی ہو، کوئی عامل لفظاً اس میں عمل نہ کر رہا ہو، اور اس طور پر کہ وہ اسم کیا ہو مسند الیہ ہو یعنی صرف مبتدا، یا وہ مسند ہو یعنی خبر. بس یہ دونوں اب رہ گئے، اور کوئی آ ہی نہیں سکتا. باقی جتنے آپ دیکھ لیں، انا زیدن قائمن، زیدن میں انا عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو وہاں عامل لفظی ہے. لیس زیدن قائمن، زیدن کے اندر لیس لفظ عامل ہے، تو صرف مبتدا اور خبر رہ گئے، ان کے اندر عامل ابتدا ہے. پھر دوہراؤ، ابتدا کسے کہتے ہیں؟ اسم کا عامل لفظی سے خالی ہو. جیسے فعل مضارع میں کہتے ہیں فعل مضارع مرفوع، کیوں؟ کیونکہ وہ جب وہ عامل ناصب سے اور عامل جازم سے خالی ہو. تو اسی طرح ابتدا اسم کا خالی ہونا کس سے؟ عامل لفظی سے، اس طور پر کہ وہ کیا بن رہا ہو؟ مسند یا مسند الیہ بن رہا ہو. بھائی تو صرف مبتدا اور خبر رہ گئے. تو کہتے ہیں انہوں نے بات یہ کی کہ جب لا کے بعد معرفہ آئے گا تو ایک اور لا بھی لانا پڑے گا اور ایک اور معرفہ بھی لانا پڑے گا، اور لا عمل نہیں کرے گا یعنی وہ اسم مرفوع ہوگا. اور مرفوع کیوں ہوگا؟ وہ یہ لا رفع نہیں دے رہا، وہ مرفوع ہوگا ابتدا کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ یعنی وہ مبتدا ہوگا. کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا. یہ مانا ہے وہاں معرفہ مرفوع باشد بہ ابتدا، اور وہ معرفہ مرفوع ہوگا ابتدا کی وجہ سے یعنی مبتدا ہوگا. چون لا زیدن عندی ولا عمرن، جیسے لا زیدن عندی ولا عمرن، نہ تو میرے پاس زید ہے اور نہ عمر ہے. حاصل کلام پھر سن لیں. آج آپ نے ما و لا مشبہتین بلیس کے بارے میں پڑھا، وہ ما اور لا جو مشابہ ہیں کس کے؟ لیس کے ساتھ. لیس کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب، اور نیز لیس جو ہے معنی کے اندر نفی پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح ما اور لا یہ بھی ایک اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب. جیسے ما زیدن قائمن، تو یہ مشابہ ہوئے لیسا کے. اور نیز یہ جیسے لیسا معنی میں نفی پیدا کرتا ہے، یہ ما اور لا بھی معنی میں نفی پیدا کرتے ہیں. اور ما اور لا میں فرق میں نے ذکر کیا کہ ما جو ہے وہ معرفہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور نکرہ پر بھی، جبکہ لا جو ہے وہ صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے. تو ان کو ما اور لا مشابہ بھی لیسا کہتے ہیں. اگلی قسم آئی تھی لائے نفی جنس. میں نے بتایا یہ لائے نفی جنس جو ہے یہ جنس کی نفی کے لیے نہیں آتا، بلکہ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے. لا رجل ظریف، کوئی آدمی خوش مزاج نہیں ہے، اس میں آدمی کی جنس کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ آدمی سے خوش مزاج ہونے کی نفی ہو رہی ہے، یعنی جنس سے رجل سے خوش مزاج ہونے کی نفی ہو رہی ہے. تو یہ لائے نفی جنس دراصل کس لیے ہوتا ہے؟ جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے. اور اس کا اسم کبھی منصوب ہوتا ہے، اور اس کا اسم کبھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اور کبھی اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، یہ اس میں عمل نہیں کرتا. اس کی میں نے صورتیں ذکر کر دیں کہ اس کا اسم مبنی علی الفتح ہوگا اگر تین شرطیں پوری ہوں. پہلی شرط کیا؟ ساتھ جڑا ہوا ہو. دوسری شرط نکرہ ہو. تیسری شرط مفرد ہو، یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو. اور تو یہ مبنی ہوگا، جیسے لا رجلا فی الدار، گھر میں کوئی آدمی نہیں. اور اگر تیسری شرط پوری نہ ہو، یعنی مفرد نہ ہو، یعنی مضاف یا مشابہ مضاف ہو، تو اس صورت میں یہ منصوب ہوگا، جیسے لا غلام رجلین ظریف فی الدار. اور اگر پہلی دو شرطوں میں سے کوئی پوری نہ ہو، یعنی لا کا اسم معرفہ آ جائے یا نکرہ تو آئے لیکن درمیان میں فصل آ جائے، تو اس صورت میں تکرار لا بھی ہوگا اور اس اسم کا بھی تکرار آئے گا، جیسے لا زید فی الدار ولا عامر کہنا پڑے گا، یا لا فی الدار رجل ولا امرأة، تو تکرار لا بھی ہوگا اور لا کے اسم کا بھی تکرار ہوگا. یوں نہ کہو لا کے اسم کا تکرار ہوگا، لا کے ساتھ ایک اور اسم کا بھی تکرار ہوگا، کیونکہ اب وہ لا کا اسم نہیں، لا تو ملغا عن العمل ہو گیا، لا عمل نہیں کر رہا، تو اب یہ جو مرفوع رفع ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہے؟ ابتدا کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے؟ ابتدا. اور ابتدا کسے کہتے ہیں؟ میں نے وہ بھی بتلایا، کسے کہتے ہیں ابتدا؟ یاد کرو اس کو، یہ کام آئے گی تعریف. اسم کا خالی ہونا عامل لفظی سے اس طور پر کہ وہ مسند الیہ ہو بن رہا ہو یا مسند بن رہا ہو. تو مبتدا خبر زید قائم، مبتدا مسند الیہ بن رہا ہے اور خبر مسند بن رہی ہے، اور دونوں عامل لفظی سے خالی ہیں، تو معلوم ہو ان کے اندر عامل کیا ہے؟ ابتدا. پھر دوہرا، ابتدا کسے کہتے ہیں؟ کس اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا اس طور پر کہ وہ مسند الیہ بن رہا ہو یا مسند بن رہا ہو. تو اب صرف مبتدا اور خبر پر یہ تعریف صادق آئے گی، ان میں ابتدا عامل ہے اور کسی میں نہیں. نیز اس کے علاوہ میں نے ایک اور فائدہ آپ کو بتلایا کہ مفرد کا لفظ نحو کی کتابوں میں چار چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی مفرد کا لفظ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی مفرد کا لفظ جملے کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی مفرد کا لفظ مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، اور کبھی مفرد کا لفظ مضاف یا مشابہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے. تو جب مفرد کا لفظ تثنیہ جمع کے مقابلے میں آئے، تو جب مفرد کہیں تو معلوم ہوا مفرد ہے، یعنی تثنیہ جمع نہیں. جب مفرد کا لفظ جملے کے مقابلے میں آئے، معلوم ہوا یہ جو اگر ہم کہیں مفرد ہے، معلوم ہوا جملہ نہیں ہے، چاہے دو لفظ ہیں، چار ہیں یا چھ ہیں، لیکن یہ جملہ نہیں. اور کبھی جب ہم مفرد کہیں اور مرکب کے مقابلے میں لائیں، تو معلوم ہوا یہ اکیلا ایک لفظ ہے، دو یا دو سے زیادہ لفظ نہیں. اور کبھی مفرد کا لفظ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں لائیں، تو جب ہم کہیں کہ مفرد ہے، تو معلوم ہوا یہ مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.